الحمد لله وكفى والسلام والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. پیر کی اس صبح والی کلاس میں ہم سورہ انعام کی تفسیر پڑھتے ہیں، معرفہ قرآن کی جلد نمبر 3 سے. ابھی جو آیات تلاوت کی گئیں تو ان کا ترجمہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور پھر خلاصہ تفسیر میں ایک بار پھر ان کی مختصر تفسیر پڑھ چکے ہیں. تو ہم پچھلی کلاس میں دراصل معارف و مسائل پڑھ رہے تھے جو کہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کے تحت نہیں لکھے ہیں. ٹھیک ہے، تو معارف و مسائل لکھے ہیں نا پیج نمبر 373 جو کہ آپ کے سامنے ڈسپلیڈ ہے، تو یہ جو ہے وہ آیت نمبر 70 ہی کے چل رہے ہیں جو کہ آپ کے سامنے سکرین پر ڈسپلیڈ ہے. وزر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا وغرتہم الحیات الدنیا وذکر بہ ان تبصل نفس بما کسبت. ٹھیک ہے، الاخر. تو اس کے معارف و مسائل ہم نے آج پڑھنے ہیں، لیکن یہ جو آیات ابھی ہم نے تلاوت کی ہیں تو ان کا ایک دفعہ یہ اشارہ تھا کہ ترجمہ پڑھ کے پھر ہم جو ہے نا واپس معارف و مسائل کے اوپر آئیں، کیونکہ یہ پڑھے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے. تو پچھلی کلاس میں جیسے کہ بات ہو رہی تھی کہ ہم نے قرآن مجید کو استعمال کرتے ہوئے قرآن مجید کی مدد سے اللہ کے بندوں کو جو اپنے دین کو کھیل تماشا بنائے ہوئے ہیں اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ٹھیک ہے، ان بندوں کو، وہ بھی تو اللہ کے بندے ہی ہیں نا، تو ان بندوں کو ہم نے قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرنی ہے. کیوں نصیحت کرنی ہے؟ ان تبصل نفس بما کسبت، کہ کہیں وہ، یعنی اس کا اردو میں با محاورہ ترجمہ کیا بنتا ہے، کہ کہیں وہ گرفتار نہ ہو جائیں اپنے کیے کی سزا میں. ٹھیک ہے، یعنی خیر خواہی کی نیت کے ساتھ ان کی جو ہے نا وہ ان کو نصیحت کرنی، خیر خواہی. ٹھیک ہے، اصل میں تو عربی کا جو لفظ نصیحت ہے اس کا مطلب ہی اردو میں خیر خواہی بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو نصیحت ہم نے کرنی ہے یہ صرف سر سے اتار دینے کی نیت سے نہیں کرنی ہے، یا کوئی تنخواہ دار بندہ جو اپنا کام کرتا ہے کہ بھئی اس کو بس تنخواہ مل جائے گی اور اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی، خالی اس نیت سے نہیں کرنی ہے، بلکہ ان لوگوں کی فکر کے ساتھ کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں کافی تفصیلی کلاس میں بات ہو گئی تھی، جنہوں نے نہیں سنی تھی تو وہ ریکارڈنگ سن لیں. ریکارڈنگ جو ہے اویلیبل ہوتی ہے ویب سائٹ کے اوپر، اور اس کا لنک گروپ کے اوپر بھیج دیا جاتا ہے ہر کلاس کے بعد. لیس لہ من دون اللہ ولی ولا شفیع، وہ اپنے جب کیے اس سزا میں گرفتار ہوں گے تو اللہ کے علاوہ کوئی ان کا ولی نہیں ہوگا، کوئی ان کا شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، بالکل تنہا ہوں گے، بالکل یعنی کسی قسم کا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا ان کو مصیبت سے چھڑانے والا. ٹھیک ہے، ये दुनिया के अंदर जो मुसीबत आती है उसमें भी यही मामला होता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं छुड़ा सकता उस मुसीबत से, और आखिरत की जो मुसीबत है उसमें भी यही मामला होता है कि कोई दूसरा नहीं छुड़ा सकता उस मुसीबत से। और फिर फरमाया था अल्लाह ताला ने, वह इन तादिल कुल अदल ला युखज मिनहा, कि अगर अपने अगर छूटने के लिए वो कोई फिदिया देने चाहे ना, सारा का सारा उनके पास जो माल पैसा सब कुछ, सारा का सारा फिदिया अगर देना चाहें कि भाई मुझे मुसीबत से निकाल दें, तो उनसे कुछ कबूल ही नहीं किया जाएगा, ठीक है, रद्द कर दिया जाएगा उनका सारा का सारा फिदिया। उलाइकल्लज़ीना उबसिलू बिमा कसबू, ये वही लोग हैं जो कि अपने किए में ही गिरफ्तार हैं, किसी दूसरे के गुनाहों की सजा इनको नहीं मिल रही है, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने ही गुनाहों की सजा मिल रही है, ठीक है, हमें भी और किसी और को भी सिर्फ और सिर्फ अपने ही गुनाहों की सजा मिलती है। और गुनाह जो है वो क्या होते हैं, अल्लाह ताला के हुक्मों की नाफरमानी है ना, गुनाह जो है वो अल्लाह ताला के हुक्मों की नाफरमानी, तो वो तो हम करते ही नहीं है, है ना, हम इतने नेक परहेजगार, हम तो अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी करते ही नहीं है, तो हम तो सेट हैं बिल्कुल, राइट। ये जो उबसिलू बिमा कसबू जो है, ये तो दूसरे लोगों के लिए है जो कि गुनाह करते हैं, हम तो गुनाह नहीं करते हैं। मैं ये बात इसलिए हम कर रहे हैं कि यहाँ पर दूसरों दूसरों की बात करें, दूसरों की खैर ख्वाही करें, दूसरों को जो है वो मुसीबत से बचाएं, तो कहीं ये बात सुनते 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 हमारे दिल में ये बात ना आ जाए कि दूसरे गंदे हैं और हम अच्छे हैं, दूसरे ही बुरे काम करते हैं और हम तो बहुत अच्छा काम करते हैं, है ना। दूसरों की खैर ख्वाही की बात होते होते शैतान ये भी तो बीच में डाल देता है ना, बीच में शैतान तो मेहनत करता रहता है, हर वक्त लगा रहता है। तो अब दूसरों की खैर ख्वाही की बात हो रही है तो अपने बारे में बहुत खुशगुमान कर देता है कि मैं तो बहुत अच्छा, मैं तो बहुत नेक, मैं तो बहुत परहेजगार, मैं तो बहुत आला, मैं तो बहुत अरफा। तो इस वजह से लेट्स रिविजिट द डेफिनेशन ऑफ गुनाह, एक गुनाह किस चीज को कहते हैं। तो चले, हमने आपसे पूछा कि गुनाह किस चीज को कहते हैं जो कि हम पर भी फिट होती हो, जो हम पर भी फिट हो जाए, ठीक है, ये जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी, ये तो हम नहीं करते ना, ये तो हम पे फिट होता ही नहीं है, ये तो दूसरे लोग करते हैं, तो हमारी तवज्जो सिर्फ दूसरों की तरफ रहेगी कि दूसरे लोग गुनाह करते हैं, दूसरे लोग जो है वो अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी करते हैं। लेकिन कोई ऐसा ऐसी तारीफ बताएं गुनाह की कि जो कि घूम के फिर हमारे ऊपर भी फिट हो जाए, ताकि हम तकब्बुर का शिकार ना हो जाए, ताकि हम तकब्बुर का शिकार ना हो सकें, शैतान हमें तकब्बुर का शिकार ना कर सके। जी, तो गुनाह की कोई ऐसी डेफिनेशन बताएं जो कि मेरे और आपके ऊपर भी फिट होती है, हो जाती है। अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी तो बस यही है ना कि बस वो शराब नहीं पीते और वो म्यूजिक नहीं सुनते, अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं सुनते हैं, अल्लाह का शुक्र है, और इस तरह की चंद और चीजें, वो गुनाह है। लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जो कि हम बहुत ज्यादा कर जाते हैं जो कि गुनाह है, यानी कोई ऐसी तारीफ हो रहा है ना जो कि जरा हमारे सर पर भी लटकती रहे तलवार की तरह, ताकि हम तकब्बुर का शिकार ना हो सके। जी, जल्दी से कोई बताए। मुश्किल सवाल है वैसे भी, टाइम वेस्ट। हाँ, टाइम वेस्ट इज पार्ट ऑफ इट डेफिनेटली, गीबत करना दूसरों की, नहीं गीबत तो गुनाह है, ठीक है, ये तो हम नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो खैरख्वाही की नीयत से दूसरों के बारे में बात करते हैं। एग्जैक्टली, माशाल्लाह, ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब दिया, नाशुक्री, नाशुक्री, ठीक है, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री, ये हम दबा के करते हैं, ये हम दबा के करते हैं, अल्लाह ताला ने हमें नेमतों में डुबाया हुआ है, ठीक है, हम हर तरह की जाहिरी हत्ता के दुनियावी ही नहीं दीनी नेमतों के अंदर डूबे हुए हैं, लेकिन वी आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, वी आर डूइंग व्हाट, वी आर टेकिंग देम ऑल फॉर ग्रांटेड। अल्लाह ताला ने अमन अता फरमाया हुआ है, ठीक है, हमें गजा की तरह जो है वो बमों का निशाना ये नहीं बनाया हुआ, हमें जो है वो शाम के सुन्नी मुसलमानों की तरह जो है वो जबह किए जाने का निशाना नहीं बनाया हुआ, हमारी औरतों और बच्चों को अल्लाह ताला ने जो है वो जनरली महफूज करके रखा हुआ, और उसके अलावा खाने पीने की जो चीज चाहिए होती है वो हम ले ही आते हैं। कोई भूखे नहीं मर रहा, कोई जो है वो कपड़ों के लिए तरस नहीं रहा कि उसको ये नहीं मिलता, उसको वो नहीं मिलता। कोई है पता के जो पहले बसों में धक्के खाते थे, आज उनके बच्चे जो है वो आलीशान गाड़ियों के अंदर, एयर कंडीशन के अंदर आराम से सफर करते हैं, माँ बाप की तरह की उनको है। एक साहब बता रहे थे कि उनकी अपने बेटे से बात हो रही थी, तो वो ड्राइवर के साथ जो है ना वो एयर कंडीशन गाड़ी के अंदर जाता है कॉलेज वॉलेज, ठीक है। तो उसके ऊपर उनको बड़ी तकलीफ, इतना लंबा सफर करना पड़ता है और ये करना पड़ता है और वो करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा बेटा मैं जब कॉलेज जाता था ना तो मुझे बसों में धक्के खाने पड़ते थे, राइट, बसों में धक्के खाने पड़ते थे और किसी किस्म की कोई फन नहीं होता था, किसी किस्म का कोई फन, कोई यानी अम्यूजमेंट नहीं होती थी बसों, कराची की बसों में धक्के खाने में, और कोई स्पोर्ट्स नहीं होते थे, कोई जो है वो एंटरटेनमेंट नहीं होती थी, सिर्फ जो है ना वो सुबह को कॉलेज के लिए भी धक्के खा के जाना होता था, शाम को जो है वो ट्यूशन के लिए भी धक्के खा के जाना होता था, और बहुत ही बुरा हाल होता था जब घर वापस पहुंचते थे, ठीक है। आप किस किस दुनिया में हैं कि आपको ये नहीं मिला और आपको वो नहीं मिला? आप तो ड्राइवर के साथ जो है वो रोजाना आराम से बैठ करके जाते हैं, बेशक ठीक है सड़कें टूटी हुई हैं, लेकिन तुम तो नहीं उन सड़कों के ऊपर चल रहे होते हैं ना, ठीक है। तो ये हाल है हमारा कि हमें अल्लाह ताला ने ना हर तरह की नेमतें जो है वो दी हुई है, दुनियावी तौर पर भी, दीनी तौर पर भी, दीनी तौर पर भी, क्या क्या गुनाहों के माहौल से बचाया हुआ, क्या क्या कुछ नहीं मिला हुआ, लेकिन वी आर टेकिंग ऑल ऑफ दिस फॉर ग्रांटेड, ठीक है ना। हम मुतवज्जे नहीं हो रहे अल्लाह ताला की तरफ, हम जो है वो फिक्र हमारे अंदर नहीं है, कोई इज़तिराब नहीं है। अगर आज के दिन अल्लाह ताला ने हमसे कोई एक भी मेजर नेमत वापस ले ली ना, हमें मुराकबा करके सोचना चाहिए कि फिर हम करेंगे क्या उसके बाद, राइट। ये जो नेमतों के असबाब अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं, अगर अल्लाह ने उनमें से एक सबब भी वापस ले लिया फिर मैं क्या करूंगी, जरा सोचना चाहिए इसके, ठीक है ना, जरा सा सोचना चाहिए। हम समझते हैं कि हमारे बाप का माल है जो हम जो है वो हमसे कोई भी वापस नहीं ले सकता, नहीं, बाप का माल नहीं है, ये अल्लाह का दिया हुआ है, ये अल्लाह का दिया हुआ है, और अल्लाह जो है ना वो एक लम्हे में हर चीज वापस भी ले सकता है और लेता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, लम्हा पहले उनको नहीं पता था कि उनसे ये सारी चीजें वापस लेने वाली, ली जाने वाली है, उनको नहीं पता था। एक हादसा हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ, एक जो है वो सांस चलनी जो है वो रुक गई और वो आसमान से जमीन पे आकर के गिर पड़े, आसमान से जमीन पे आकर के गिर पड़े, और फिर उसके बाद कुफर की बातें करना शुरू हो गए, उसके बाद जो है वो ईमान से ही खारिज हो गए और फिर हमेशा हमेशा की जहन्नुम के मुस्तहक बन गए। क्यों ऐसा हुआ? नेमतों की नाकदरी की वजह से, राइट। तो टाइम वेस्ट जो है ना, ये टाइम भी तो नेमत है ना, सबसे बड़ी नेमत ही टाइम है, तो इसको हम वेस्ट करते हैं, यानी हम ना ईमान मजबूत ना बनाने की तरफ मेहनत नहीं कर रहे होते, हम अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ बनाने के ऊपर कोई फिक्र नहीं कर रहे होते। वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, हम सिर्फ नेमतों को बस एंजॉय कर रहे हैं और हम फिक्र नहीं कर रहे कि मेरा ईमान भी मजबूत हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये नेमत की नाकदरी है और इसके ऊपर कुफराने नेमत का अजाब होता है, इसके ऊपर कुफराने नेमत का अजाब होता है। हर वक्त कोई आए हमारी उंगली पकड़ करके हमें चलाए तो हम चलेंगे, वरना हम नहीं चलेंगे, और चूंकि कोई आके उंगली पकड़ के चलाता नहीं, इस वजह से हमारा तो कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर दूसरे का है। उंगली पकड़ के चलाता क्यों नहीं है? दूसरों का कसूर है, मेरा तो कोई कसूर नहीं है। अल्लाह ताला ने अकल नहीं दी तुम्हें, अल्लाह ताला ने तुम्हें आंखें नहीं दी, अल्लाह ताला ने तुम्हें जुबान नहीं दी, अल्लाह ताला ने तुम्हें कान नहीं दी, अल्लाह ताला ने तुम्हें जो है वो इज्जत का जो है वो घर माहौल ये सब कुछ नहीं दिया, तो खुद क्यों नहीं करती, खुद क्यों नहीं करती, राइट। सारी नेमतें अल्लाह ताला ने दी हुई हैं, हम नाशुक्री करते हैं, हमें अजाब के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। दूसरों की खैरख्वाही करें अपने आप को भी अजाब से बचाने के लिए, क्योंकि दूसरों की जब खैरख्वाही करने की फिक्र होगी ना तो पहले तो अपना ईमान बनाना पड़ेगा, पहले तो अपना ईमान बनाएंगी तब दूसरे के ईमान के ऊपर मेहनत कर सकती है ना। खुद ही पता नहीं ईमान का मतलब क्या होता है तो दूसरे के ईमान के ऊपर क्या मेहनत करेंगी, ठीक है। अमाल का कुछ नहीं पता, आदाब का कुछ नहीं पता, कभी सीखने की कोशिश ही नहीं करी, वहां पे दूसरा ना सिखाया, दूसरे ने नहीं सिखाया, दूसरे ने नहीं सिखाया, तुमने खुद क्यों नहीं सीखा? ठीक है, अल्लाह ताला ने अकल दी, अल्लाह ताला ने शऊर दिया, अब खुद क्यों नहीं करते, तो खुद भी तो करे ना कुछ। ठीक है, तो नेमतों की नाकदरी ये ऐसा गुनाह है जिसमें हम सब मुबतला होते हैं, इससे तौबा करनी चाहिए। सिर्फ वो जो कि इज़्तिराब में मुबतला हो जाए ना, इज़्तिराब, इज़्तिराब, ये इज़्तिराब जो है ना, ये बीइंग अन इजी कि भाई मैं नहीं कर रही जो मुझे करना चाहिए था, मैं अल्लाह की इबादत ऐसे नहीं कर रही जैसे कि मुझे करनी चाहिए थी, ये फिक्र जब तक ना लगे ना, उस वक्त तक नाकदरी चल रही है, उस वक्त तक नाकदरी चल रही है। और जिसको फिक्र लग जाती है, फिर उसको किसी को बताना नहीं पड़ता कि तुम नाकदरी कर रहे हो, वो खुद ही इस फिक्र में रहता है कि मैं तो अल्लाह ताला की नेमतों की नाकदरी कर रही, मैं तो अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर रही। ठीक है, तो ये इस्तराब, ये अल्लाह ताला से मांगने की चीज है। ठीक है, अल्लाह ताला मुझे आप फिक्र अता फरमा दीजिए, ये आप फिक्र अता फरमा दीजिए, इस्तराब अता फरमा दीजिए। वाद से होता है, इल बोलते हैं रा अलिफ, वाद पौ रा अलिफ बा, इल बोलता राब, इल बोलते राब एक्चुअली सर। ठीक है, तो उलाइक अल्लज़ीन उबसलू बिमा कसबू, ये वो लोग हैं जो कि अपने किए के गुनाह के अंदर सदा के अंदर गिरफ्तार हैं। लहुम शराबो मिन हमीम, उनके लिए गरम खौलता हुआ पानी है पीने के लिए, वह अजाबुन अलीम, और एक दर्दनाक अजाब है, बिमा कानू यकफुरून, किस वजह से कि उन्होंने जो कुफरान नेमत किया है, उन्होंने जो इनकार किया है ना इन बातों का जो उनको समझाई जा रही थी, इस इनकार की वजह से वो इस अजाब के अंदर मुब्तला है। ठीक है, इस इनकार की वजह से वो इस अजाब में मुब्तला है। ये नसीहत का इनकार करने वालों के लिए है। बिमा कानू यकफुरून का मतलब क्या है कि वो कहते हैं कि नहीं, ये खाना जो है ये अल्लाह ने नहीं दिया, ये खाना जो है वो बुत ने दिया है। ठीक है, नहीं, ये मतलब नहीं है इसका कि वो दूसरी चीजों का इनकार करते हैं, शुक्र अदा नहीं करते इस वजह से, नहीं, बल्कि वो नसीहत का इनकार करते हैं, नसीहत का इनकार, कि नहीं ये नसीहत बिल्कुल बेकार चीज है, बिल्कुल बेकार की बातें कर रहे हैं आप, बिल्कुल इररेलेवेंट बातें कर रहे हैं आप, और आप अपना काम से काम रखें, आप अपने अपना रास्ता नापें, आप मुझे नसीहत ना करें, मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। ठीक है, ये बिमा कानू यकफरून की बात जो है ना, इसका तर्जुमा और इसका तफसीर जो है वो कान खोल के हमें सुन लेना चाहिए, ये नसीहत का इनकार करने की बात हो रही है। कफरा यकफरू से यहाँ पे मुराद नसीहत का इनकार है। ठीक है, नसीहत का इकरार करेंगे फिर उसके बाद जो है वो अगली नियमतों की बात आएगी कि उन नियमतों के ऊपर शुक्र करना है, क्योंकि नसीहत में यही तो बताया जाता है, नसीहत क्या हो रही होती है, नबी अलैहिस्सलाम क्या बताने के लिए आए थे दुनिया के अंदर कि तुम नियमतों का शुक्र अदा करो। अब कोई कहे कि नहीं मैंने आपकी बात मानी नहीं, मैंने तो खुद ही शुक्र अदा करना है, बस जो मुझे समझ में आएगा मैं शुक्र अदा कर लूंगी, मैं अपनी मर्जी से जिसको नियमत समझूंगी उसका शुक्र अदा कर लूंगी, जिस तरह से शुक्र अदा करना होगा उस तरह से अदा कर लूंगी, आप चुप रहें, आप चुप रहे। अगर किसी ने नबी अलैहिस्सलाम को ये बात कही कि मैं अपनी मर्जी से जो है वो शुक्र भी अदा करूंगी, ठीक है, अपनी मर्जी से जो है इबादत भी करूंगी, जैसा मुझे करना चाह आएगा वैसा मैं कर लूंगी, ठीक है, आप चुप रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर उसके जो शुक्र वो फिर करेगी, नेमतों का जो शुक्र करेगी उसकी कोई वैल्यू है? जीरो। उसकी तमाम शुक्र की बातों की वैल्यू जीरो। फला नुकीमु लहुम यौमल कियामती वज़न, उसकी किसी भी नेकी जो भी उसने शुक्र अदा की है अल्लाह ताला के, बिल्कुल जीरो वजन होगा उसका, कोई भी उसकी हैसियत नहीं होगी। क्यों भाई, अल्लाह की नेमतों की शुक्र तो अदा कर रही है, क्यों वैल्यू जीरो हो गई? तन्ने जी बताएं क्यों वैल्यू जीरो हो गई, क्यों वैल्यू जीरो हो गए? अल्लाह की नेमतों का शुक्र तो अदा कर रही है, तो फला नुकीमु लहुम यौमल कियामती वजना, क्यों क्यों उसकी नेमत उसकी उसकी नेकियों का वजन नहीं किया जाएगा, क्यों उसके शुक्र गुजारियों का वजन नहीं किया जाएगा? इतना लंबा जवाब की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा जवाब तो लिखा है उन्होंने तो उसको जी, क्यों क्यों वजन नहीं किया जाएगा भाई, इतनी तो नेकियां कर रही है, वजन नहीं किया जाएगा उसकी नियमतों, उसकी उसकी नेकियों का, क्योंकि ईमान लाने में शर्त है कि नबी के तरीके पे होना चाहिए। यार सीधा सीधा जवाब देना, इतना अपना लिखा पढ़ा जो बचपन में पढ़ा था वही जवाब दे रही हैं आप, सीधा जवाब देना, वो क्लास में जो बात हो रही है। दिखना नहीं जी, नसीहत का इनकार। अभी थोड़ी देर पहले जो लफ्ज का है वो लफ्ज आपको याद नहीं रहता, नसीहत का इनकार। नबी अलैहिस्सलाम ने जो उनको बताया था तरीका उसका उसने इनकार कर दिया, अपने तरीके पे जो है वो नेमतों का शुक्र कर रही है, राइट? नबी अलैहिस्सलाम का उसने इनकार कर दिया, ठीक है, और अपने तरीके से नेकी कर रही है, अपने तरीके से इबादत कर रही है, अपने तरीके से शुक्र कर रही है, ठीक है। तो इसके ऊपर उसकी जितनी नेमतें, उसकी जितनी शुक्र हैं, उसके जितने इबादतें हैं, ठीक है, वो सब जीरो, एब्सोल्युटली जीरो, क्योंकि नबी का इनकार कर दिया ना उसने, नबी की बात का इनकार कर दिया उसने, ठीक है। तो उसूल क्या समझ में आता है कि सारा जो मसला होता है ना जिसकी वजह से हमारी सारी नेकियां सिफर हो जाती हैं, वो नसीहत का इनकार करने की, नसीहत का इनकार करने की वजह से होता है, ठीक है। इसी को कुफर कहते हैं, और कोई चीज कुफर नहीं होती, इसी को कुफर कहते हैं। अच्छा, तो फिर उसके बाद قل أندعو من دون الله ما لا ينفع ما لا ينفعنا ولا يضرنا, कि कह दीजिए इनसे कि क्या हम पुकारें अल्लाह के सिवा उनको जो ना नफा पहुंचा सके हमको और ना नुकसान। ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله, और क्या हम फिर जाएं अपनी एड़ियों के ऊपर, अपने उल्टे पांव फिर जाएं बाद इसके कि अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दे दी, ठीक है। यानी आप नबी अलैहिस्सलाम और ईमान वाले जो कि कुरान मजीद को ईमान के साथ पढ़ते हैं, उनको हुक्म हो रहा है कि आप कह दीजिए इन काफिरों को जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की नसीहत का इनकार किया ना, नबी अलैहिस्सलाम की बातों का इनकार किया, नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत का इनकार किया, ये दोनों एक ही बात है, रिसालत का इनकार किया या बातों का इनकार किया, दोनों ही कुफर है। रिसालत का इनकार का मतलब कि ये रसूल नहीं है, ठीक है। बातों का इनकार का मतलब कि ठीक है चलो रसूल होंगे लेकिन बातें इनकी ठीक नहीं है, बातें इनकी ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये भी नबी अलैहिस्सलाम का इनकार ही है कि भाई ये कैसे हो सकता है कि रसूल तो हैं लेकिन बातें ठीक नहीं है, या तो रसूल हैं, अगर रसूल हैं तो बातें भी ठीक होनी जरूरी हैं, और अगर आप कह रहे हैं कि बातें ठीक नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि आप कह रहे हैं कि रसूल ही नहीं है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि रसूल हो लेकिन बात ठीक ना हो। तो बात का इनकार करना भी रिसालत का इनकार करना है, नबी की बात का इनकार करना भी नबी की रिसालत का इनकार करना ही है, ठीक है। तो आप जो जो इनकार नहीं करते हैं, ठीक है, वो उन लोगों को कह दें कि हम अल्लाह को छोड़कर कि किसी और को पुकारें जो हमें ना नफा दे सकता हो ना हमें नुकसान दे सकता हो, और हम अपने एड़ियों पे फिर जाएं बाद इसके कि अल्लाह ने हमें हिदायत दे दी। बाद इसके ये नहीं कहा कि बाद इसके कि हम हिदायत तक पहुंच गए, बल्कि अल्लाह की तरफ क्रेडिट अल्लाह को, हिदायत सबसे बड़ी नेमत है ना, हिदायत की नेमत, तो इस नेमत का क्रेडिट अल्लाह की तरफ करना बहुत अहम बात है। ये अल्लाह ने हमें हिदायत दी, अल्लाह यानी मेरा अपना कोई कारनामा नहीं है कि मैं हिदायत याफ्ता हूं, बल्कि अल्लाह ने हमें हिदायत दी। देखिए अल्लाह खुद सिखा रही है कैसे कैसे बात करनी है, ठीक है। काफिरों से भी बात कर लो ना, तो ये मत कहना कि मैं हिदायत तक पहुंच गया, इवन काफिरों से भी बात करो तो ये मत कहना कि मैं हिदायत तक पहुंच गया, बल्कि ये कहना कि अल्लाह ने हमें हिदायत दे दी, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि अगर आप काफिर के सामने ये बात कहेंगे कि अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी बाद इज़ हदान अल्लाह, तो फिर क्या होगा, फिर काफिर क्या कहेगा आगे से, जवाब कोई बताएगा? अगर आप काफिर के सामने ये कहेंगे कि अल्लाह ने आपको हिदायत दे दी, तो आगे से काफिर का क्या जवाब होगा? वही जो हमारा भी होता है, अल्लाह रहम करे हमारे, हमारे भी इसी तरह के जवाब होते हैं कमोबेश। जी बिल्कुल सही, मुझे क्यों नहीं दी, ठीक है, हमें क्यों नहीं दी, तुम्हें क्यों दे दी, मुझे तो नहीं दी तो मेरा क्या कसूर, मेरा क्या कसूर, मुझे तो नहीं थी, तुम्हें दिए तो ठीक है, तुम जाओ मजे करो, हिदायत हिदायत के ऊपर मजे करो, हमें अगर देता तो हम भी कर लेते, हमें तो दी नहीं। ठीक है, तो बजाहिर तो ये जो जुमला कहना है ना, बादा इज हदाना अल्लाह, ये जुमला तो दावत तबलीग के खिलाफ जाता है कि आप तो फिर अपने जो ऑडियंस है उस ऑडियंस को खुद एक जो है ना वो आर्ग्यूमेंटेशन करने का मौका दे रहे हैं कि अगला बंदा फिर आगे कहेगा कि अच्छा मुझे तो नहीं दी, मेरा क्या कसूर, राइट, मुझे तो नहीं दी, मेरा क्या कसूर, ये भी तो कह सकता है ना वो। ठीक है, तो इसके बावजूद आप ये बात कहें बेफिक्र को होकर के ये बात कहें, क्योंकि एक बात तो बिल्कुल सही, जैसे इन्होंने यहाँ पे ये लिखी आखिरी जो बात लिखी है ना, ये बिल्कुल सही है कि अगर मुझे मतलब काफिर के देखें ये बात आप कहें क्योंकि यही हक है, अल्लाह ही ने हिदायत दी है। अब आगे से वो जो अलल्ले तलल्ले करेगा ना, ठीक है, तो ये बात उस वक्त ये बात याद रखें कि मैंने तो वो करना है जो अल्लाह ने मुझे सिखाया है, ठीक है, मैंने तो वो करना है जो अल्लाह ने अपने कुरान में मुझे सिखाया है, और मुझे क्या सिखाया है कि मैं काफिर के सामने भी ये बात कहूं कि अल्लाह ने हमें हिदायत दी, तो मैंने तो वही करना है। ठीक है, अब जिससे मैं बात कर रहा हूं, जिसको मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं, तो अगर वो इसको सुन करके गलत नतीजा निकाले तो ये उसका मसला है, ये तो उसका मसला है, और भाई अल्लाह ताला उसको हिदायत नहीं दे रहा तो अब मैं क्या करूं, मैंने तो वो करना है जो अल्लाह ने मुझे कहा है करने के लिए, ठीक है, मैंने तो खुद अताअत करनी है ना अल्लाह के हुक्म की, बाकी वो जो चाहे उसकी मर्जी है और अल्लाह ताला उसको हिदायत दे ना, क्योंकि हिदायत तो अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ में रखी है। ठीक है, तो मैं अल्लाह के हुक्म को तोड़ करके अगले बंदे को हिदायत के रास्ते बनाने की मेहनत नहीं कर सकता। अल्लाह का हुक्म क्या है कि कुल, है ना, कुल है ना अल्लाह का हुक्म, कहो, ठीक है, तो ये इज हदान अल्लाहु, ये कुल ही का तो अतः बन रहा है इसके ऊपर, कुल ही तो आगे चल रहा है ना कि कहिए उनसे बाद इज हदान व नुरद्दु अला आकाबिना बाद इज हदान अल्लाहु, ये अल्लाह का हुक्म ही तो चल रहा है कि उनको ये बात कहो, मैंने तो अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ा, अल्लाह ने हिदायत अपने हाथ में रखी है, अगर अल्लाह ताला उसको हिदायत देना चाहेंगे, ठीक है ना, उसको इस काबिल समझेंगे कि उसको हिदायत मिलनी चाहिए, तो उसके दिल में ये बात डाल देंगे कि जिस तरह बात करने वालों को हिदायत अल्लाह ने दी है, तो उसी तरीके से मैं कितना ही बुरा क्यों ना हूं, अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे सकता है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह सिर्फ उसका तो नहीं है ना, अल्लाह तो मेरा भी है ना, ठीक है, अल्लाह सिर्फ उसका खालिक और मालिक तो नहीं है ना, अल्लाह तो मेरा भी खालिक और मालिक है, तो अल्लाह अगर सुनने वाले के दिल में हिदायत डालना चाहेंगे ना, तो अल्लाह ताला उसके दिल में ये ख्याल डाल देंगे और फिर वो आपकी बात मान लेगा, और अगर अल्लाह जो है वो हिदायत नहीं डालना चाहेंगे उसके दिल में, तो फिर ये ख्याल डाल देंगे, यानी ये एतराज डाल देंगे उसके दिल में, और वो ये कहेगा अच्छा तुमको अल्लाह ने दी है, मुझे तो नहीं दी, मेरा क्या कसूर इसके अंदर। ठीक है, तो हमें तो वही करना है जो कि अल्लाह ने हमें हुक्म किया है करने का, जो यहाँ पे है कि कुल नुरद्दु अला आकाबिना बादा इज अदान अल्लाहु, फिर उसके बाद मजीद क्या फरमाया, कल्लदी जैसे कि इस्तहवत हुश शैतानु, यानी अगर हम इस तरह की हरकत करेंगे कि हम अपनी एड़ियों पे फिर जाएं, हिदायत मिल गई उसके बाद हम वापस पलट जाएं, तो हमारी तो मिसाल ऐसे बंदे की जय हो जाएगी कि उस शख्स के जैसे हो जाएगी जिसको कि शैतान ने रास्ता भुला दिया हो, फिल अर्द, वो रास्ते में जा रहा था, जमीन पे जा रहा था कहीं, और शैतान ने उसको रास्ता भुला दिया, ठीक है, और फिर वो हैरान परेशान खड़ा हो गया, हैराना, ठीक है, लहू असहाबुन यदउनहू इलल हुदा तेना, हालांकि उसके करीब लोग हैं, असहाब से यहां पे मुराद उसके करीब आसपास लोग हैं, यदउनहू जो उसको बुला रहे हैं, दावत दे रहे हैं हिदायत की तरफ, यानी सीधे रास्ते की तरफ, वो रास्ता भटक गया लेकिन बुलाने वाले भी मौजूद हैं, उसको बुला भी रहे हैं, इतना आ जाओ हमारे पास, यानी वो खुद हिदायत के रास्ते पर है। ठीक है, क्या मतलब? इतना अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये फरमाया कि वो लोग जो के उसको बुला रहे हैं, उसके आसपास मौजूद हैं, इतना कि आ जाओ हमारे पास, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि जो लोग बुलाने वाले होते हैं ना हिदायत की तरफ, वो खुद गुमराह नहीं होते, बल्कि वो खुद सिरात मुस्तकीम पर होते हैं। क्योंकि अगर वो खुद रास्ता भटके हुए होते तो फिर वो इसको इतना नहीं कहते कि आ जाओ हमारे पास, बल्कि वो उसको कहते, वो देखो वो है हिदायत का रास्ता, तुम उधर चले जाओ। थोड़ा सा इमेजिन करें, जैसे कि आप रेगिस्तान में एक सड़क है, उस सड़क के ऊपर जा रही हैं, ठीक है। अब उस सड़क से जो है ना, वो आप किसी वजह से उतर गई और रेगिस्तान में कहीं और जाना शुरू हो गई, तो अब वहां पर अगर कोई लोग मौजूद हैं जो कि खुद भी सड़क पे नहीं है लेकिन आपके करीब हैं, ठीक है, तो वो आपको क्या कहेंगे कि तुम वापस सड़क पे चली जाओ? वो आप ये कहेंगे ना, तुम वापस सड़क पे चली जाओ। वो ये तो नहीं कहेंगे कि तुम सड़क पे आ जाओ, इतना तुम आ जाओ सड़क पे, वो ये तो नहीं कहेंगे। क्यों? इसलिए कि वो खुद सड़क पे नहीं है, राइट। जो खुद सड़क पे होगा वो तो आपसे, आपको ये कहेगा ना कि आ जाओ हमारे पास, हम सड़क पर हैं, आ जाओ हमारे पास, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि हिदायत की तरफ बुलाने वाला शख्स जो होता है ना, वो हिदायत की तरफ धक्के नहीं देता, या ये नहीं होता कि वो खुद गुमराही पर है और वहां से लोगों को पुश कर कर करके जो है वो हिदायत के रास्ते पे ला रहा है, बल्कि वो खुद हिदायत के रास्ते पे होता है, वो लोगों को रास्ते पर बुला रहा होता है, ठीक है। तो अगर हमने लोगों के साथ खैरख्वाही का काम करना है तो पहले हमें खुद जो है वो सीखना पड़ेगा और उस पर अमल करना होगा हिदायत के ऊपर, ठीक है। और दूसरी बात ये भी कि जब आप सड़क पर से उतर जाती हैं तो अब सड़क पे जो मौजूद लोग हैं वो आपको बुलाएंगे ना, जो कि उसके, जो कि आपके आसपास, यानी अभी आप सड़क से ज्यादा दूर नहीं हो तो वो आपको बुला रहे हैं, लेकिन अगर आप सड़क से बहुत दूर चली जाएंगी तो फिर क्या होगा? फिर जो सड़क वाले हैं फिर वो आपके असहाब तो ना रहे, वो तो बईद हो गए आपसे, ठीक है। तो क्या मतलब इसका कि अगर हम गलती पर जा भी रहे हैं ना, तो भी हम नेकों की सोहबत से बहुत दूर ना जाएं, हम उनको बिल्कुल अवॉइड करना ना शुरू कर दें, बल्कि हम उनके करीब ही रहें ताकि वो हमारे असहाब में मौजूद हो, वो हमारे असहाब में ही उनका शुमार हो और वो हमें आसानी से वापस बुला सकें। अगर हम बहुत दूर चले जाएंगे ना तो फिर वो हमें बुला भी नहीं सकेंगे, क्योंकि वो हम, हमारी खातिर वो खुद गुमराही के रास्ते पे नहीं जाने वाले, वो खुद गुमराही के रास्ते पे नहीं जाने वाले, वो अपने रास्ते को नहीं छोड़ने वाले, वो अपने रास्ते को नहीं छोड़ेंगे। तो इस वजह से अगर गुनाह का शिकार हो भी जाए तो भी हम नेकों का साथ ना छोड़ें, तो भी हम नेकों का साथ ना छोड़ें, उनका उनका कुर्ब ना छोड़ें, बहुत दूर जाने, ये मायूसी की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है कि नहीं अब तो मैं गुनाह कर रही हूं, अब जो है ना मैंने तो उनके करीब ही नहीं जाना, अब तो मैंने उनकी मजलिस में नहीं जाना, अब तो मैंने उनकी क्लास में नहीं जाना इसलिए कि मैं गुनाह कर रही हूं, ठीक है, इसलिए कि मैं गुनाह कर रही हूं और मैं तो वो कर ही नहीं पा रही जो कि वो क्लास के अंदर सिखाते हैं, तो इस वजह से मैंने तो क्लास में नहीं जाना। भाई अगर आप क्लास में नहीं आएंगी या अगर आप मजलिस में नहीं आएंगी तो फिर आपकी ये सोहबत ही खत्म हो जाएगी, फिर आपकी सोहबत ही खत्म हो जाएगी, फिर आप शिकाकिन बईद चली जाएंगी, दूर चली जाएंगी, अब वो आपको नहीं बुला पाएंगे, अब वो आपको नहीं बुला पाएंगे, ठीक है। अच्छा क्या लिखा है उन्होंने कि क्या उन्हें जवाब में ये कह सकते हैं कि हिदायत के असबाब अल्लाह ने दी है, अकल और दिल, दिल जो खुद वजूद का इकरार करता है और अकल असबाब से मुझे की सलाहियत लगती है, आप गौर करें, क्या आप उन्हें जवाब में ये कह सकते हैं? अगर वो ये कहें कि हाँ, उनसे आप आगे मजीद उनको समझा सकते हैं कि अगर वो आपको ये इल्जामी जवाब दें कि अल्लाह ने मुझे हिदायत नहीं दी, तुम्हें हिदायत दी है तो मेरा क्या कसूर है, तो हाँ, उसको मजीद आप समझा सकते हैं कि भाई अल्लाह ताला ने हिदायत के असबाब दिए हैं अकल और दिल, तो अब आप इनका इस्तेमाल करें जिस तरह बाकी चीजों में इनका इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह दीन की बातों को समझने में भी इसका इस्तेमाल करें। ठीक है, मैं तो आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, मैं तो ये इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो ये अल्लाह का हुक्म है कि इस तरह से बात करो, और दूसरा ये कि मैं अल्लाह ताला से मोहब्बत करना चाहता हूँ। और जब कोई किसी से मोहब्बत करता है ना, तो अच्छे बात का क्रेडिट वो उसको दे देता है, अपने ऊपर नहीं रखता। ठीक है, तो मैं इस अंदाज से जो बात कर रही हूं, मैं इस वजह से ऐसे कह रही हूं कि अल्लाह ने मुझे हिदायत दी ताकि अपने ऊपर इसका क्रेडिट लेने की बजाय अल्लाह को मैं इसका क्रेडिट दे दूं। तो इस तरीके से आप उनको फिर मजीद बात समझा सकते हैं। लेकिन डरना नहीं है कि नहीं मैंने तो ये बात ही नहीं करनी कि फिर वो आगे से ये सोचेंगे। भाई जब अल्लाह ने हुक्म किया तो फिर तो ये बात करनी है ना, आगे से फिर वो सोचेंगे तो फिर आगे से मजीद उनको समझा दें कि ऐसे नहीं सोचें। ठीक है, बहरहाल तो वह उमिरना लिनुस्लिमा लिरब्बिल आलमीन, और हमको हुक्म हुआ है कि ताबे रहें परवरदिगार आलम के। ठीक है, यानी अल्लाह ताला ने जो हुक्म फरमाए हैं ना, तो हम उनके सामने सरे तस्लीम खत्म करते रहे, खम किए रहे। लिनुस्लिमा, नुस्लिमा असलमा युस्लिम इस्लामन, मतलब होता है अपने आप को सुपुर्द कर देना, अपने आप को झुका देना और बात मानते रहना। ख्वाहिशात जो हैं वो फिर अल्लाह ताला पूरी कर। ठीक है, दुनिया में जितनी सलाहियत है ना ख्वाहिश पूरी करने की, अल्लाह ताला दुनिया में उतनी ख्वाहिशात पूरी करवा देते हैं हमारी। ठीक है, और बाकी जितनी भी हैं वो जन्नत क्यों बना के रखी हुई है, इसीलिए तो बना के रखी है अल्लाह ताला ने कि हमारी ख्वाहिशात पूरी हो। ठीक है, अगर सारा मामला इसी दुनिया में करना तो जन्नत बनाने की जरूरत क्या थी भाई, इतना इन्वेस्टमेंट करने की जन्नत के अंदर, इतनी कंस्ट्रक्शन करवाने की, इतनी बिल्डिंगें बनाने की, इतने घर बनाने की, इतने जो है वो फल फ्रूट और लिबास और काम काज करने वाले खादिम और खादिमाएं और ना जाने क्या क्या नेमतें जन्नत में फ्री में खामखा में बना दी अल्लाह ताला ने, खामखा में बना दिए। क्यों बनाई है भाई, इसलिए बनाई है ना कि इस दुनिया में नहीं मिलनी, इस दुनिया में ख्वाहिशात पूरी नहीं होनी, वहां होनी है पूरी। ठीक है, तो ये तो दीन की बुनियाद है कि जन्नत में ख्वाहिश पूरी होगी। तो अगर हम इसी चक्कर में रहे कि नहीं दुनिया में क्यों नहीं होती, नेकी तो कर रही हूं फिर मेरी ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं हो रही, भाई फिर जन्नत क्यों बनाई है अल्लाह ताला ने, फालतू में बना दिया खाली। तो दुनिया में अल्लाह ताला दिल का इत्मीनान अता फरमा देते हैं अगर हम अल्लाह की नियमतों का शुक्र अदा करते हैं, तो अल्लाह ताला नियमतें बढ़ाते हैं और जो है वो मुतमईन कर देते हैं, इत्मीनान अता फरमा देते हैं। लेकिन जो सारी ख्वाहिशात पूरी होने की जगह है वो सिर्फ और सिर्फ मरने के बाद मिलेगी, मरने से पहले नहीं मिलने वाली है, और वो जन्नत है। ठीक है, कब्र के अंदर उसकी खिड़कियां शिड़कियां खुल जाएंगी, तो कुछ ना कुछ वो पोर्शन जो है ना वो उसका कब्र में नजर आना शुरू हो जाएगा, लेकिन मिलेगा वो आखिरत के बाद ही। ईमान वालों का सफर भी आसानी से तय हो जाएगा, कोई इतना दूर भी नहीं है। ओमिरना लिनुस्लिमा लिरब्बिल आलमीन व नकीमु सलाता व तकूहू, और ये कि नमाज कायम करो और अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो। ठीक है, नमाज कायम करो, नमाज कायम करने का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं होता, बल्कि नमाज की जो इबादत है तो उसका एक माहौल बनाना, ये है अकीमु सलात का मतलब, नमाज का माहौल बनाना। ठीक है, अब नमाज का माहौल आप कैसे बनाएंगी? ठीक है, एक सवाल होता है ना भाई, नमाज का माहौल बनाने का क्या मतलब, बाजार जाके जानेमाजें खरीद करके ले आना, ये हो गया नमाज का माहौल बन गया भाई, घर में खूब सारी जानेमाजें आ गई। ठीक है, और नमाज का माहौल क्या हो गया कि आपने घर के अंदर एक कोने में वो जानेमाजें बिछा करके भी छोड़ दी, राइट, नमाज का माहौल बन गया। और वुजू के लिए पानी का भी इंतजाम हो गया, नमाज का माहौल बन गया। और चलिए कुछ आप भी बता दें, नमाज के माहौल में क्या चीजें आती हैं? हम नमाज पढ़ना, हाँ चले, एक और भी चीज आ गई कि नमाज पढ़ना भी, खाली जानेमाजें खरीद के ले आए, घर में जो है मुसल्ले की जगह बना दी और जो है वो पानी का इंतजाम कर लिया वुजू के लिए, ठीक है, गुसल के लिए भी जो है वो गुसल खाने का भी इंतजाम कर लिया, और फिर उसके बाद नमाज पढ़ना भी शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये माहौल बन गया, खलास बात खत्म हो गई, लेकिन बच्चा अभी भी नहीं आ रहा नमाज पढ़ने के लिए। आपने तो सारी चीजें ला के रख दी, बच्चा अभी भी नहीं आ रहा नमाज पढ़ने के लिए, फिर क्या करेंगी? अतीमुस सलात का हुक्म पे अमल हो गया, आप तो नमाज पढ़े चले जा रही हैं, पढ़े चले जा रही हैं, पढ़े चले जा रही हैं, लेकिन बच्चा या बच्ची जो है ना वो नमाज नहीं पढ़ना चाहती, फिर क्या करेंगी? जी, बेनमाजी के माहौल से बचाना, ठीक है, यानी उस माहौल से बचाना भी अकीमुस्सलात के हुक्म में दाखिल है जो माहौल उस बच्चे को नमाज के खिलाफ उकसाता है। ठीक है, जो माहौल उस बच्चे को नमाज के खिलाफ उकसाता है, तो फिर वो माहौल कौन सा माहौल होता है? वो बाहर का माहौल होता है, ठीक है, जहां पर खुल के बुराइयां हो रही होती हैं, और आज के दौर में वो घर के अंदर का भी माहौल होता है, अगर आपने घर के अंदर ही बच्चे को जो है वो डिवाइसेस दी हुई, स्क्रीन टाइम आपने बहुत सारा दिया हुआ है, ठीक है, तो ये जो स्क्रीन टाइम बच्चों को देते हैं ना, ये नमाज के माहौल के खिलाफ बच्चे को लेके जाते हैं। भला कैसे? एक तो हो गया ना, गंदी गंदी चीजें देखते हैं, लेकिन अगर वो गंदी चीज नहीं देख रहा, वो खाली पाकीजा कार्टून देख रहा है, तो फिर स्क्रीन टाइम उसको माहौल के खिलाफ कैसे उकसाएगा? अगर पाकीजा कार्टून्स देख रहा है तो स्क्रीन टाइम उसको माहौल के खिलाफ कैसे, नमाज के खिलाफ कैसे उकसाएगा? उसकी तो नहीं है, अभी आप में से एक आध जो है वो शायद जवाब दे सकती हैं सवाल का। बिल्कुल रिसेंटली उनके साथ एक डिस्कशन, एक बात शेयर की थी, जो कि बहुत पहले किसी बाकियों के साथ भी शेयर करी थी, लेकिन अभी रिसेंटली फिर से शेयर करी। ठीक है, नमाज के खिलाफ ये स्क्रीन्स कैसे उकसाती हैं? एड्स, डिस्ट्रैक्शन? नहीं, छोटा बच्चा, वो छोटा बच्चे खैर बात नहीं हो रही, लेकिन जो लाइक करीबुल बुलूग बच्चा है, या जो है वो बालिग बच्चा है, बच्ची है, तो वो अगर स्क्रीन्स के ऊपर बहुत ज्यादा वक्त लगा रही है, बेशक उसके अंदर वो सिर्फ पाकीज़ा वीडियो गेम्स खेल रही हो, शरिया कंप्लाइंट वीडियो गेम्स खेल रही हो, ठीक है, और शरिया कंप्लाइंट जो है वो कार्टून्स देख रही हो, लेकिन फिर भी वो स्क्रीन जो है ना वो उसको नमाज के खिलाफ उकसाती है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जो स्क्रीन्स के ऊपर गेम्स और कार्टून्स वगैरह होते हैं ना, तो इनको खेलने से और इनको देखते रहने से ये इंसान के जिस्म के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको डोपामाइन कहते हैं, ठीक है, जदाकमन, ठीक है, डोपामाइन कहते हैं उसको, सही है, ये जो चीज रिलीज होती है ना, वो खास स्क्रीन के ऊपर जिस किस्म की मामला चल रहे होते हैं ना, उनकी वजह से रिलीज होती है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर इंसान जो है ना वो उसके साथ अटैच रहता है, स्क्रीन के साथ अटैच रहता है। इसी वजह से एक साइकोलॉजिस्ट साहब का बयान आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था, और अब दोबारा भी करेंगे इंशाल्लाह, तो ये पहले आदत बनती है, फिर उसके बाद ये एडिक्शन बन जाती है, ठीक है, आदत बनती है, फिर आदत से ये लत बन जाती है, एडिक्शन बन जाती है, ठीक है, ये कहां से उसको मिलता है ये डोपामाइन? उसको ये स्क्रीन से मिलता है, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर वीडियो गेम्स के एक्शंस होते हैं, कार्टून्स की जो है वो हरकतें होती हैं, और नई नई किस्म की चीजें दिखा रहे होते हैं इससे, ठीक है, बहुत तेजी के साथ ये चीजें चल रही होती हैं। इसके बरक्स नमाज के अंदर डोपामाइन रिलीज कम से कम शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है, नमाज के अंदर कोई ऐसी चीजें नहीं हो रही होती है, नमाज के अंदर तो पाबंदी है, नमाज के अंदर क्या है? पाबंदी, अल्लाहु अकबर, अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब आप जो है ना वो जो दिल चाहे खाना वो खा नहीं सकते, जो चीज बोलना चाहे आप बोल भी नहीं सकते, है ना, सवाए जो बोलने का हुक्म है बस वही बोल सकते हैं, उसके अलावा तो आप कुछ नहीं बोल सकते, हत्ता के इधर उधर देखना भी जो है वो नमाज को खराब कर देता है, और ज्यादा खुजाना भी जो है वो भी नमाज को खराब कर देता है, बोलना तो नमाज को तोड़ ही देता है, खाना तो नमाज को तोड़ ही देता है, तो नमाज तो पाबंदी वाली चीज है, ठीक है ना, अल्लाह ताला ने छोटी रखी है, वरना इतनी बड़ी बड़ी नमाजें, वो तो जिनका डोपामाइन रिलीज होता है फिर वो लंबी नमाजें पढ़ते हैं नमाज के अंदर, हमारा कोई थोड़ी रिलीज होता है डोपामाइन, हमारा डोपामाइन तो टीवी स्क्रीन को देख करके होता है रिलीज, ठीक है, तो अब नमाज की पाबंदियां वो बच्चा बर्दाश्त कर ही नहीं सकता कि जिसको कि आपने स्क्रीन की लत लगा दी है। तो अब आप दनादन नमाज पढ़ती रहे अपने घर के बनाए हुए मुसल्ले के अंदर, लेकिन आपका बच्चा नमाज नहीं पढ़ना चाहेगा। मारपीट के खौफ की वजह से शायद पढ़ ले, लेकिन जैसे ही आपका खौफ टलेगा उसके बाद वो नमाज नहीं पढ़ना चाहेगा। तो अकीमुस्सलात के हुक्म के ऊपर आप अमल कर ही नहीं सकती क्योंकि आपने माहौल बनाया ही नहीं। माहौल बनाने के लिए तो उसको इन डिस्ट्रैक्शन से बचाना था, राइट? इन चीजों से आपको बचाना था उसको, तब माहौल बनाती है ना। वो तो आपने बनाया ही नहीं, तो ये कितना बड़ा गुनाह है। अकीम सलात का हुक्म कुरान मजीद में कितनी दफा आया हमारे ऊपर? 700 दफा तो आया ना, 700 दफा तो कोई मामूली हुक्म है ये, लेकिन हम उसके लिए माहौल नहीं बनाते, ठीक है ना? और माहौल अगर बनाने पर आते हैं दीनदार लोग तो वो जानमाजें बन खरीद लेते हैं और गुसल खाने का और वजू खाने का इंतजाम तो कर देते हैं, लेकिन इस गंदे माहौल से और इन गंदी डिस्ट्रैक्शन से और इस किस्म की चीजों से बचाने की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं होता। इल्मी नहीं हासिल करते कि इनमें क्या बुराई है, क्या खराबियां हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, ठीक है? तो अकीम उस्सलात का हुक्म, क्या हम इसके ऊपर भी अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? वह तकू हो और अल्लाह ताला से डरते रहो उसके ऊपर, तो फिर तकवा का बयान अगर हो तो फिर घंटों लग जाए इसके ऊपर। वहुअल्लज़ी इलैहि तुहशरून, और वही है जिसके सामने तुम सब इकट्ठे होगे, यानी मौत कभी ना भूलो, ये किसी वक्त भी तुम्हारे ऊपर आ सकती है। और जब तुम्हारे ऊपर ये मौत आ गई ना तो तुम्हारा यौमुल कयामा शुरू हो गया। अब सोचें हम कयामत के दिन के कितना करीब है, क्योंकि हर इंसान की मौत उसके लिए कयामत है, ठीक है? क्योंकि हिसाब किताब शुरू, और कयामत में क्या होना है, हिसाब किताब ही तो होना है, मौत के बाद हिसाब किताब शुरू। अब सोचें आपके किसी करीबी रिश्तेदार का पिछले दिनों इंतकाल हुआ है, सडन डेथ बहुत सारों का हुआ होगा, हो सकता है उनको अब याद भी ना हो, या एकदम से बीमार पड़े और चंद दिनों में दुनिया से अगली जहान में पहुंच गए। कितने रिश्तेदार, कितने जो है वो जानने वाले, कितने दोस्त अहबाब, तो क्या दूसरों का हो सकता है, हमारा नहीं हो सकता? तो अगर हमारा इंतकाल हो गया, ठीक है, हमारे मोहल्ले में कल ही हुए इनके, ठीक है, इनके मोहल्ले में, तो अगर हमारा भी हो गया तो फिर हमारा तो मामला फिर खत्म, खलास, ठीक है, बुक ऑफ डीड जो है फिर वो क्लोज हो गई, हमारे करने वाले काम तो खत्म हो गए, हमारी कयामत शुरू हो गई। तो वहुवल्लज़ी इलैहि तुहशरून, और वो वही है जिसकी तरफ तुम सब इकट्ठे हो गए। वहुवल्लज़ी खलक समावाति वल अर्ध, और उसकी अजमत क्या है कि उसने आसमानों और जमीन को बिल्कुल ठीक ठीक पैदा किया है, उसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं रखी है, बिल्कुल। वो यौम यकूलु कुन फयकून, और जिस दिन वो कहेगा कि हो जा, ठीक है, कि बस हो जा, कुन फयकून, बस हो जाएगा सब कुछ, ठीक है? यानी कयामत का जो मंजर है ना, कयामत का जो मामला है, ये 6 दिन में नहीं होगा। दुनिया तो 6 दिन में बनी ना, ये 7 आसमान और ये दुनिया, ये आलमुल खल्क में आता है। आलमुल खल्क जो है वो 6 दिन में बने, और वो दिन भी पता नहीं कितने लंबे होंगे। कयामत में कोई नहीं होना 6 दिन, 2 दिन, 2 दिन भी नहीं, 1 दिन भी नहीं, कुन फयकुन, ठीक है? ये अल्लाह ताला की अजमत है। और उस दिन फिर जो चीजें होंगी वो इस जहान से भी ज्यादा, उस दिन तो फिर मतलबियात तो समावाती वाला, ये जो आसमान होंगे ना और जमीन होगी ना, वो अल्लाह ताला के हाथ के जैसा भी अल्लाह ताला का हाथ है अल्लाह आलम, लिपटी हुई होगी, गोया कि जिस तरह हम कोई 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 को कपड़ा लपेट दें अपने हाथ के ऊपर ना, वो अल्लाह ताला के ऐसे, ठीक है? तो वो कयामत का तो मंजर इससे भी ज्यादा बड़ा मंजर होगा। कौलुल हक, उसकी बात तो सच्ची है। वलहुल मुल्क, और उसी की सल्तनत है। यौम युनफखु फिस्सूर, जिस दिन फूका जाएगा सूर। आलिमुल गैबी व शहादा, वो गैब का भी इल्म रखने वाला है, और जो खुली बातें हैं मुशाहिदे में जो आ जाती हैं बातें शहादा, वो उनका भी इल्म रखने वाला है। आलिमुल गैबी व शहादा, वहुवल हकीमुल खबीर, और वही है हिकमत वाला और खबर वाला, सारी न्यूज उसके पास मौजूद है, और सारी की सारी हिकमत जो है वो उसी की है, अल हकीम अल खबीर। तो ये है हमारा परवरदिगार जो अपने बारे में हमें खुद बताता है अपने कलाम के अंदर, और हम इस नेमत की नाकदरी करते हैं। हमारे घर में कुरान मजीद पड़ा होता है, हम ज्यादा से ज्यादा मारे बांधे की तिलावत कर लेते हैं हम, लेकिन हम उससे अपने परवरदिगार को समझने और जानने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे होते। ठीक है, अब ये अल्लाह ताला, ये कोई पीर साहब तो नहीं बता रहे ना हमें यहाँ पर कि अल्लाह ऐसा है, अल्लाह वैसा है, अल्लाह ताला खुद बता रहा है। एंड वी आर लाइक सॉरी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी डोंट वॉन्ट टू नो अबाउट यू। ठीक है ना, तो आप अपने बारे में बता बता करके जो है वो पूरा आपने कुरान मजीद भर दिया अपने बारे में बता बता के, हमने खोलना ही नहीं है इसको, हमने इसको सीखना ही नहीं, हमने इसको समझना ही नहीं। तफसीर भी मौजूद है, इंटरनेट के ऊपर भी सारा मौजूद है, फोन के ऊपर जो है वो मारिफुल कुरान कुरान पूरी की पूरी ऐप मौजूद है, तर्जुमा तो ये आसान तर्जुमा कुरान जो है मुफ्ती तकी उस्मानी दावत बरकातहू का मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड। वॉट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन है ना, कुरान में इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन अल्लाह, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन अल्लाह। लेकिन तो हमारी तवक्कोआत क्या है अल्लाह से, कि बस मरने की देर है, फिर उसके बाद अल्लाह ताला रेड कारपेट बिछाएंगे और हमें जन्नत में दाखिल करवाएंगे, और हमारे दिल का हाल ये, वी डोंट इवन वॉन्ट टू नो अबाउट आवर अल्लाह, वी डोंट इवन वॉन्ट टू नो अल्लाह ताला हमें क्या बता रहे हैं अपने बारे में, क्या चाहते हैं हमसे। ठीक है, अल्लाह ताला से हमें पक्की सच्ची तौबा करके फिर रमजान मुबारक में दाखिल होना है। ठीक है ना, ये रमजान मुबारक शहरुल कुरान है और ये शहरुल्लाह है, एक ही बात है, ये अल्लाह का ये महीना है और कुरान अल्लाह ताला की सिफत है, ये कोई अलग चीज नहीं है अल्लाह ताला से, ये अल्लाह ताला की सिफत है। तो शहरुल कुरान का मतलब कि ये शहरुल अल्लाह है। ठीक है, तो इस महीने में तो हमने कुरान के साथ ऐसा जुड़ना है कि बस उसके बाद फिर कोई हमें कुरान से जुदा ना कर सके, उसके कोई हमें इस कुरान से जुदा ना कर सके। खुद भी सीखना है और दूसरों को भी, वज़क्किर बिल कुर फज़क्किर बिल कुरआनी मन यखाफ वईद, इस पर भी हुक्म करना है, इस पे इस हुक्म पे भी अमल करना है कि हमने दूसरों को भी नसीहत इस कुरान से करनी है। वज़क्किर भी ही, जो अभी हमने इन्हीं आयात के अंदर पढ़ा, हमने नसीहत भी कुरान मजीद से करनी है, यानी इतना कुरान मजीद हमें समझ में आ जाए कि फिर वो हमारे गुफ्तगू का हिस्सा बन जाए। ठीक है, उसके मानी उसके मारिफ कम अज कम इतना तो हिस्सा हमारे बन सकते हैं ना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी कुरान की खिदमत के लिए, इसकी समझ के लिए, इसके इश्क के लिए, इसकी मेहनत के लिए कबूल फरमा ले, हमारे आने वाली नस्लों को भी कबूल फरमा रहे, और ये आने वाला जो महीना है इस महीने में हमें अपने कुरान के साथ ऐसा जोड़ने की के लिए कबूल कर ले, ऐसी जुड़ने की तौफीक अता फरमा दे कि इसके बाद कभी भी कोई भी हमें इस कुरान से जुदा ना कर सके, कोई भी अल्लाह ताला के इस कुरान से हमें उसके बाद जरा बराबर भी जुदा ना कर सके, हमारी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना जो है ये कुरान बन जाए। ठीक है, हदीस इसके जिमन में आ जाएगी, फिक्र ना करें, फिका की किताबें इसके तहत आ जाएंगी, लेकिन असल तो कुरान ही है। ठीक है, कुरान और कुरान की तफसीर, क्योंकि हम अरबी जुबान चूंकि इतनी नहीं जानते, तो इस वजह से कुरान की तफसीर ही यहाँ पर मुराद है, बाकी फिका और हदीस और सारी चीजें उसके साथ साथ आगे चलेंगी। ठीक है, अल्लाह ताला हम सबकी दुआओं को और हमारी जो भी टूटी फूटी मेहनतें हैं उनको कबूल फरमाए। वा आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।